Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, lecture number 12. कल हमने महाराजा प्रताप रुद्र पर जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई सर्वो मत्ताचार्य और राय रामानंद के आशीर्वाद से उसके विषय में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि महाप्रभु किस प्रकार संन्यास आश्रम के नियमों के प्रति बहुत ज्यादा दृढ़ होते थे। छोटे हरिदास के विषय में हमने पढ़ा महाप्रभु के द्वारा गुडीसा मंदिर की सफाई महाप्रभु कितना हृदय से करते थे उसके विषय में हमने पढ़ा। उसके उपरांत उत्तर भारत की यात्रा और झारखंड के जंगल में जो पशु थे उनका महाप्रभु के नृत्य में कीर्तन में नृत्य करना उसके विषय में पढ़ा कि महाप्रभु जब कीर्तन करते तो मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, पशु भी भगवान के प्रेम में नाचने लगते थे। उसके बाद हम वहां पहुंचे हैं जहां वृंदावन से लौटते हुए वे पहले प्रयाग आए जहां वे रूप गोस्वामी से मिले थे और उनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। फिर वे बनारस पहुंचे, वे दो मास तक सनातन गोस्वामी को दिव्य ज्ञान की शिक्षा देते रहे। सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने में एक लंबी कहानी है, उसका पूरा वर्णन यहाँ पर संभव नहीं है। उसकी कुछ मुख्य बातें यहाँ पर पेश की जा रही हैं, जो श्री गोपाजी हमें बताएंगे। और इन सब चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को दिव्य ज्ञान दिया था वो इतना अद्भुत आध्यात्मिक है तो इसको समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्ति तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रीयद्वैतं गदाधारं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सनातन गोस्वामी जिनको पहले साकर मलक कहते थे, अब ये क्योंकि मुसलमान राजा के पास कार्य करते थे और इसलिए उन्होंने उनका नाम चेंज कर दिया था, साकर मलक के नाम से उसको बुलाते थे। नवाब हुसैन शाह के शासन काल में बंगाल सरकार के मंत्री पद पर थे। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। अब क्योंकि सनातन गोस्वामी के जीवन का मकसद केवल महाप्रभु के साथ रहकर प्रचार कार्य करना था और उनको वो इस संसार में आए क्यों थे, महाप्रभु के साथ मिलकर जो भगवान की दिव्य लीला स्थलियां हैं उनकी खोज करना, शास्त्र लिखना, तो जब तक उनको ये सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था महाप्रभु का तब तक वो हुसैन शाह के पास मंत्री पद कार्य करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से उनका भेंट हुई तो फिर उन्होंने अपनी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया और चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा स्टार्ट कर, मतलब इच्छा से उनके साथ रहने लगे। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुंचे तो वे श्री तपन मिश्रा तथा चंद्रशेखर के अतिथि बन गए और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। उस समय वाराणसी की अगुवाई मायावाद संप्रदाय के महासन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती करते थे। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की भेंट हो रही है प्रकाशानंद सरस्वती के साथ, क्योंकि अब क्योंकि वाराणसी जब लौट रहे थे तो वो तपन मिश्रा के घर पे आए थे और वहां पर मायावाद, वहां पर जो है ना वाराणसी की जो अनुयायी मायावाद संप्रदाय के महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। मतलब वाराणसी में वही एक मुख्य ब्राह्मण थे और वो मायावादी थे, लेकिन जब महाप्रभु वाराणसी में थे तो उनके सामूहिक कीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकृष्ट हो गई। पहले तो सब लोग उसकी मायावाद की बातें मानते थे। अब मायावाद में क्या होता है कि भगवान को स्वरूप नहीं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है और चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में हजारों तीर्थ यात्रियों यात्री उनके पीछे हो लेते। कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप में आकर्षित थे तो कुछ भगवान की महिमा में गाए गए उनसे सुरीले गीतों की, मतलब चैतन्य महाप्रभु की ओर आकर्षित होने के हजारों कारण थे। तो इतने सुंदर गौर कांति उनके स्वरूप को देखकर पिघलते हुए सोने की तरह, जैसे श्रीमती राधा रानी का स्वरूप होता है उनकी ओर, उनकी नेत्रों की ओर, उनके नृत्य करने की ओर और उनके इतने मधुर वाक्यों की ओर, बस सब लोग उनको देखते तो किसी ना कोई वजह बन जाती अपनी, कोई मतलब उनकी वेशभूषा ऐसी होती थी, उनका आकर्षण ऐसा होता था कि बस हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है जिन कतिपय लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी प्रकाश आनंद सरस्वती को भी मिला। अब वाराणसी में क्योंकि प्रकाश आनंद सरस्वती जो है उसका ही चलता था, अब वो क्योंकि मायावादी थे, लेकिन जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को देखा, उनके साथ जो जब उनका सानिध्य महाप्रभु का उनको प्राप्त हुआ, तो सब लोग क्या कहने लगे कि महाप्रभु ही भगवान से भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है। तो फिर ये बात जब उनके महान सन्यासी जो थे प्रकाश आनंद सरस्वती, उनको जब ये समाचार मिला, तो फिर भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा एक प्रकार की आध्यात्मिक स्पर्धा चली आ रही है। अतः जब महाप्रभु का समाचार प्रकाश आनंद सरस्वती को मिला, तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं। अतएव जो लोग समाचार लाए थे उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु का मान मर्दन किया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की, क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे जो इनके प्रचार विचार से मात्र धार्मिक आवेश था। प्रकाश आनंद सरस्वती वेदांत के उद्भट विद्वान थे, अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन में ना लगकर वेदांत की ओर ध्यान दें। अब उन्होंने क्योंकि प्रकाश आनंद सरस्वती मायावादी थे, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के भक्त थे, यानी वैष्णव भक्त थे। अब उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि तुम पागल हो गए हो, तुम लोग इतने बड़े वेदांती हो, सारे शास्त्र पढ़े हैं, वेदांत में लगो, ये पागलों की तरह तुम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हो, ये सब छोड़ दो। और बहुत ज्यादा ने चैतन्य महाप्रभु के मान मर्दन किया, उनके विषय में ऐसी बातें की। एक भक्त ब्राह्मण को जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, प्रकाश आनंद द्वारा की गई आलोचना अच्छी नहीं लगी, अतएव वह अपनी व्यथा महाप्रभु के पास प्रकट करने गया। उसने बताया कि जब उसने सन्यासी प्रकाश आनंद सरस्वती के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया, तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने प्रकाश आनंद के मुख से कई बार चैतन्य नाम उच्चरित होते सुना, वह ब्राह्मण इसीलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाश आनंद ने कृष्ण शब्द का एक बार भी उच्चारण नहीं किया, यद्यपि उसने चैतन्य का नाम कई बार लिया। अभी ब्राह्मण ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आपके विषय में वो ऐसे बात कर रहा था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आपकी आलोचना, आपके विषय में कोई इस तरह बात करे, लेकिन वो बार बार चैतन्य चैतन्य कह रहा था, लेकिन हैरत की बात है उसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया। महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त को बताया कि मायावादी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं करते, ये मायावादी कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी है, भले ही ये सदैव ब्रह्म आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें। इस प्रकार अपराधी होने के कारण ये वास्तव में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। कृष्ण का नाम तथा भगवान अभिन्न है, परमलोक में परम सत्य के नाम रूप या व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं होता, क्योंकि परमलोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान कृष्ण के लिए शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न है जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, उनके नाम तथा यश को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं, ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप और उन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु बता रहे। अब क्योंकि उस ब्राह्मण ने जाके बताया कि उसके मुख से प्रकाश आनंद सरस्वती के मुख से एक बार भी भगवान से कृष्ण का नाम नहीं उच्चारण हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए बताया कि कृष्ण का नाम लेना कोई साधारण बात थोड़े है। कृष्ण का नाम और कृष्ण स्वयं अभिन्न है। जितना पावर कृष्ण के अंदर है, नाम नाम कारी बहुदानी सर्वशक्ति ही तत्र अर्पिता, जितना पावर, जितनी शक्ति भगवान के अंदर है, जितनी मिठास, जितना आकर्षण, जितनी दिव्यता भगवान के अंदर है, उतनी सारी दिव्यता भगवान के पवित्र नाम के अंदर है। तो यह नाम हर कोई ले नहीं सकता, मायावादी तो स्पेशल इस नाम को उच्चारण करने का अधिकार ही नहीं रखते। वास्तव में भक्तों, ये हमारे परम सौभाग्य है कि हमें भगवान ने अधिकार दिया है। हम इतने सौभाग्य वाले हैं कि हम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। ये जो हमारे मुख से निकल रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह कोई साधारण नाम नहीं है, यह भगवान ही है। भगवान में और भगवान के नाम में अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का पवित्र नाम ग्रहण करते हैं तो जीवात्मा पर साक्षात कृष्ण विराजमान होते हैं। तो कितना हमारा सौभाग्य है, लेकिन दुर्दैवमी दृश्यमी हाजनी ना अनुराग, हमारा बड़ा बड़ा दुर्भाग्य क्या है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण स्वयं हमारी जीवात्मा पर आने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि उन्हें कृष्ण में, कृष्ण के नाम के प्रति हमारा कोई आकर्षण उत्पन्न ही नहीं होता है। हमारा हृदय होता ही नहीं है भगवान के पवित्र नाम, ऐसा लग रहा है बस फॉर्मेलिटीज पूरी करने के। लेकिन फिर भी यदि किसी जीव के मुख से यह कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा है, यदि कोई इस किसी ने इस स्टेज को पाया है कि वो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर सक रहा है, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। करोड़ों करोड़ जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं जब वो कृष्ण का नाम, बहुत सारे हम लोग ऐसे देखते हैं, किसी किसी को हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा, तो रिजल्ट में हरे कृष्णा बोलते भी नहीं है, कुछ और अपनी संप्रदाय का बोल देंगे। मतलब भगवान की उनके ऊपर इतनी कृपा भी नहीं है कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण वो कर सके। वो बस ऐसे बोल देंगे, अलग से बोल देंगे, नमस्ते बोल देंगे, हाँ कैसे हो, हरे कृष्ण की बदली में हरे कृष्ण भी नहीं बोलते। तो हम सबके ऊपर कृष्ण की कितनी कृपा है कि हम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण इतनी सरलता से कर रहे, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। जब दिल करे हम बोलते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी ऐसा होता है जब जप कर लेते ना, पूरा जप करके जब उठते हैं तब कोई बात नहीं कर रहे होते, माउथ खुद भी कुछ चल रहा होता है, कृष्ण हरे 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 राम ऐसा लगता है, जैसे जीवा को अब और कुछ बोलना आ ही नहीं रहा है, कोई और बात भी कर रहे होते तो भी मुंह से वो महामंत्र निकल रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है भक्तों, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम भगवान के पवित्र नाम, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि साधारण व्यक्ति जो मायावादी होते हैं उनको तो यह अधिकार ही नहीं होता है कि वो भगवान के पवित्र नाम को ग्रहण कर सके, क्योंकि भगवान के नाम या श्रीला ये सभी एक ही समान है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न नहीं है, तो भगवान हर किसी के मुख पर नहीं आते हैं। तो ये हम सब बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंदमय है। वैसे तो शास्त्र भगवान के तीन फेज बताते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भगवान की दिव्य लीलाओं की बात आती है तो ब्रह्म की अनुभूति और परमेश्वर के साथ तदाकार होने की अनुभूति से बहुत अधिक आनंद आता है। जब हम कृष्ण के साथ कृष्ण की लीलाओं का स्वादन करते हैं, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं, यदि ऐसा न होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से स्थित है वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट न होते। बहुत सारे ऐसे भक्त जैसे सुखदेव गोस्वामी के विषय हम जानते, पहले ब्रह्म की उसमें दिव्य आनंद में पहले से स्थित थे, लेकिन जब भगवान की लीलाओं के विषय में बात आई तो फिर वो उनकी ओर आकर्षित हो गए। इसका मतलब है उसमें ज्यादा टेस्ट है। इसके पश्चात महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें महाप्रभु तथा प्रकाश आनंद सरस्वती भी सम्मिलित थे। अब यहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ है, क्योंकि प्रकाश आनंद सरस्वती कौन थे, मायावादी थे, और महाप्रभु वैष्णव भक्त थे, तो इन दोनों का डिबेट करवाने के लिए महाप्रभु जी के जो भक्त थे उन्होंने एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में दोनों विद्वानों के बीच में संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया गया। अब क्या बातें हुई संकीर्तन आंदोलन के प्रति, तो उसके विषय में यहाँ पर बताया जाएगा। महान मायावादी सन्यासी प्रकाश आनंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की उपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को क्यों पसंद करते हैं। उन्होंने पूछा कि जब सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है तो फिर आप संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं। आप क्योंकि जानते थे मायावादी सन्यासी प्रकाश आनंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरह से जानते थे कि वो भी सन्यासी हैं, और क्योंकि केशव भारती से उन्होंने संन्यास शिक्षा ली थी, तो जानते थे कि भाई सन्यासी का क्या धर्म होता है कि वो वेद अध्ययन करे, और आप वेद अध्ययन को छोड़ के खाली संकीर्तन करते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो। आपको भी तो सन्यासियों के धर्म का पालन करना चाहिए ना, वेद अध्ययन करने चाहिए, वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, और आप सारा दिन बस संकीर्तन करते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो। महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत ही विनीत भाव से दिया। वेदांत का अध्ययन ना करके मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूँ क्योंकि मैं महामूर्ख हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। मूर्खों द्वारा वेदांत का अध्ययन से समाज में इतनी अशांति मची हुई है। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं मूर्ख हूँ अतएव मेरे गुरु ने मुझे मना किया है कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूं। उन्होंने कहा कि तुम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो क्योंकि इससे तुम भाव बंधन से मुक्त हो सकोगे। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र का अध्ययन और संकीर्तन के बारे में बताया कि ज्यादा ही जरूरी क्या है, आपको करना क्या है, भाव बंधन से छुटकारा ही चाहिए ना। तो हमारी ये स्थिति नहीं है, ये जो कलयुग है वो वेदांत दर्शन का नहीं है, वेदांत सूत्र के अध्ययन का नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु से जब उसने पूछा तुम क्यों करते हो ऐसा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा गुरु मोहे मूर्ख जाने, कि गुरु महाराज ने तो मुझे मूर्ख कहा, मूर्ख समझा और बोले मूर्ख तुम तो है नहीं वेदांत अधिकार, जपो तुम कृष्ण नाम यही तुम्हारा यही वेदांत का सार, कि तुम्हें वेदांत का अधिकार नहीं है, तुम मूर्ख हो, तुम समझोगे नहीं तुम ऐसा करो खाली वेदांत का सार मैं तुम्हें बता देता हूँ, जपो तुम कृष्ण नाम, तुम खाली कृष्ण नाम का जप करो और भाव बंधन से मुक्ति तुम्हारी यूं ही हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके लिए यही आदेश किया है कि वेदांत में उलझने की जरूरत नहीं, और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। वेदांत में 90% तो क्या बताया गया, गुणों के विषय में बताया गया है कि सत्वगुण रजोगुण, और हमें क्या करना है शुद्ध सत्व में आना है, इन सारे गुणों से ऊपर उठना है। तो वो कैसे आ सकते हैं, केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करके। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि आप भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए क्योंकि इससे तुम भवबंधन से मुक्त हो सकोगे। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, यही समस्त शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो ब्रह्म नारदीय पुराण का है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि हम पढ़ते ना हरे नाम, वो ब्रह्म नारदीय पुराण का श्लोक है जो कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे गुरु महाराज ने एक ही पुराण का श्लोक सिखा दिया कि बाकी वेदांत को छोड़ो इसको पकड़ो, और वो श्लोक है हरे नाम हरेर नाम अयव केवलम कलव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। अब जो कलयुग के लिए दिया गया उसी को पकड़ो ना, बाकी सारे तो कलयुग के लिए है नहीं, तो कलयुग में क्या करना है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का, और इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागल की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि सचमुच ही कीर्तन विधि से मैं पागल बन गया हूँ, तो मैं अपने गुरु से इसके विषय में पूछने गया। उन्होंने मुझे बताया कि यह पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है कि जिससे देव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। यह इस ईश प्रेम का प्रतीक है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। ईश प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की पांचवी अवस्था कहलाती है और यह मुक्ति मुक्त अवस्था से ऊपर है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त करता है और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब मैं महामंत्र के इस पवित्र शब्दों का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, पागलों की तरह नाचता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ, इतना आनंदित हो रहा होता हूँ भगवान का नाम जब मुख से उच्चारण करता हूँ तो मुझे न जाने क्या हो जाता है। जब मैंने अपने गुरु महाराज को ये बताया तो वो बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, ये जो तुम्हारी स्थिति है यह उस ईश प्रेम का प्रतीक है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। वास्तव में भक्तों, जो चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की अलग अलग विधियां बताई गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो हम जो रोज कहते हैं ना सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो चुके हैं, कृष्ण प्रेम। तो यह कृष्ण प्रेम केवल कृष्ण के नाम गायन और कथा श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब इतनी सरल विधि है तो फिर मैं वेदांत सूत्र में उलझ कर क्यों अपने इस सौभाग्य से दूर रहूं? तो क्योंकि इससे चैतन्य महाप्रभु हमें बताना चाह रहे हैं कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम अवस्था प्राप्त होती है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि भगवान मेरे मुखारविंद से अपने उनका नाम उच्चारण हो रहा है, जिससे मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो रही है। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि, माना आप कीर्तन भी करो साथ साथ में ना वेदांत सूत्र भी पढ़ो। खासानंद सरस्वती को यह भली भांति ज्ञान था कि महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से नवद्वीप में एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे, अतएव उनके द्वारा अपने को मूर्ख कहना निश्चित रूप से साभिप्राय है। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, महाशय यदि आप अन्यथा ना ले तो मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर दूं। अब चैतन्य महाप्रभु को और भी हंसी आ रही थी कि ये ऐसे पूछ रहा है, और बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन था कि ठीक है तुम कीर्तन भी करते रहो और साथ में वेदांत सूत्र भी पढ़ो। तो महाप्रभु ने कहा, अगर अनुमति हो और आप बुरा ना मानो तो मैं रिप्लाई करता हूँ आपको। वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमोदित हुए और एक स्वर से बोले कि चाहे आप जो कुछ भी उत्तर दें उसे हम बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले कि ठीक है, आप जो भी बोलोगे, आपकी बात का बुरा मानने का स्वयं को अधिकार नहीं दिया। माना सब लोग इतना प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु की इस बात करने का, वे ऑफ टॉकिंग उनका इतना प्यारा था कि उनकी बात का बुरा मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बोला ठीक है, आप बोलो जो भी बोलोगे, हम बुरा नहीं लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र भगवान द्वारा उच्चरित दिव्य शब्द या ध्वनियों से युक्त है, अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षम्यता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती, क्योंकि वेदांत सूत्र साक्षात भगवान आपके मुखारविंद से भगवान के दिव्य शब्द हैं, तो उसमें कोई त्रुटि भ्रम धोखा ये सब तो हो ही नहीं सकता। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त हुआ है। उपनिषद जो हमें बता रहे हैं वो वेदांत सूत्र का ही संदेश है, अतएव उसमें जो कुछ सीधे तौर पर कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। कि जो आसान बात है वो महिमा, वो भी तो इम्पोर्टेंट ही है ना, जो शंकराचार्य ने जो भी व्याख्या की है उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतएव ऐसी टीका से सर्वनाश होता है। यानी कि जो सीधा वेदांत सूत्र में लिखा हुआ है उसको हमें एज इट इज देना चाहिए। अब शंकराचार्य ने जो टीकाएं की है वो तो उनका उससे कोई डायरेक्ट संबंध ही नहीं है, अपनी तरफ से सारा बताया है। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है, जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म अंततः भगवान है, वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छिन्न है और निराकार रूप में सुप्रतिष्ठित किए गए हैं। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो ब्रह्म शब्द है ना वो सर्वोच्च का सूचक है और आखिर में ये ब्रह्म जो है वो अंततः भगवान ही है। लेकिन यहाँ पर वेदांत सूत्र में जो शंकराचार्य जी की जो टीका है उसमें क्या निराकार रूप में उसको बता दिया गया। आध्यात्मिक जगत की प्रत्येक वस्तु जिसमें भगवान का रूप शरीर स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है दिव्य आनंद के परिपूर्ण होती है। सभी शाश्वत रूप से प्रबुद्ध तथा आनंद पूर्ण है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि इसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई भगवान के दिव्य शरीर को संसारी मानता है वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपराधी होता है। सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम भगवान के दिव्य शरीर को संसारी मानते, भगवान को निराकार मानते, भगवान को बोलते कि तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, तुम्हारा कोई आकार नहीं है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो भी इस बात को मानता है, मायावादी फलसफों को, शंकराचार्य जी की मायावादी टीकाओं को मानता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, तो वेदांत सूत्र पढ़कर उसका सर्वनाश होने वाला है। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस तरह पुरी के भट्टाचार्य से बोले थे और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया। और चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी से ऐसा ही होता था, मतलब जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते थे उनको हमें जैसे पहले सबसे पहले याद है चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी जो कि मायावादी सन्यासी से उनसे भेंट की और उसके बाद उनको हराया। उसके बाद सर्वभौम भट्टाचार्य जो कि मायावादी सन्यासी के शिष्य थे उनको और आज फिर प्रकाशानंद सरस्वती। क्योंकि इस समय जब चैतन्य महाप्रभु आए थे ना तब ज्यादातर लोग क्या करते थे कि वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते थे, मायावाद में ज्यादातर उलझे हुए रहते थे। मतलब वेदांत का कोरा ज्ञान, वेदांत पढ़ते थे लेकिन भगवान से कोई प्रेम नहीं करते थे। महाप्रभु ने अपने सशक्त तर्क यानी कि कोई साधारण बात नहीं करते थे, वो भी वेदांत से ही वेदांत के विषय में बताते थे और वेदांत सूत्र के मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया कि ये सब जो व्याख्याएं मायावादी हैं यानी कि जो भगवान को स्वीकार नहीं करती वो सब ही गलत हैं। वहां पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा भगवान है, अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से जब उन्होंने यह वेदों की विषय में सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने फौरन थोड़ी सी देर में सबको कन्विंस कर दिया कि वास्तव में शास्त्र अध्ययन, वेद अध्ययन का मकसद क्या है, भगवान से प्रेम अपना स्थापित करना। और इस तरह से सारे सन्यासी जो सिर्फ और सिर्फ शास्त्र के बने हुए थे, शास्त्र खाली पढ़ते थे, उन सब ने भक्ति संप्रदाय में दीक्षा ले ली। सबों ने भगवान श्री चैतन्य के पवित्र नाम को स्वीकार किया और सबों ने महाप्रभु के साथ भोजन किया। सबको इतना सौभाग्य महाप्रभु ने प्रदान किया कि उनके साथ प्रसाद खाया। सन्यासियों की इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एकत्रित होने लगे। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। यानी कि जितनी आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत सारे वेदों में तरीके बताए गए हैं, लेकिन जब सारे सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए, फिर सब लोग लोकप्रियता बढ़ गई वाराणसी में, सब लोग चैतन्य महाप्रभु को ही सरेंडर कर रहे थे। मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवत साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो है श्रीमद् भागवतम धर्म। और भागवत धर्म क्या है? भगवान के पवित्र नाम को गाना और भगवान के विषय में श्रवण करना। तो तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। फिर सारे लोग जो वाराणसी में पहले वेदांत सूत्र में लगे पड़े थे, सब श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जब महाप्रभु वाराणसी में अपना डेरा डाले थे, तो सनातन गोस्वामी भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करके वहां पर आ गए। अब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में ही थे और वाराणसी के समस्त मायावादियों को भक्ति में परिवर्तित कर दिया। वहीं पर कीर्तन संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट हुआ और भगवत श्रीमद् भागवत धर्म की स्थापना करने के बाद वहीं पर सनातन गोस्वामी भी अपने सारे पद से अवकाश लेकर इस्तीफा देकर आ गए। वे नवाब हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत बंगाल सरकार के भूतपूर्व मंत्री भी थे। अब वो वहां पर वो नवाब हुसैन शाह के उसमें भी गवर्नमेंट में भी काम करते थे, वहां पर मंत्री थे, भूतपूर्व मंत्री थे। चूंकि नवाब उन्हें अवकाश नहीं देना चाहता था, अतएव उन्होंने वहां से छूटकर आने में कुछ कठिनाई हुई। अब जो नवाब हुसैन शाह थे ना, वो पूरा डिपेंडेंट थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पर, तो कभी भी उनको टाइम नहीं देते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने का, और इस तरह तो उनको भक्ति करने का टाइम नहीं मिलता था। फिर चैतन्य फिर सनातन गोस्वामी ने सोचा, ऐसी नौकरी से क्या फायदा जो हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर सके। तो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वहां से छूट कर आए, तो भी वे वाराणसी आए और भगवान ने उन्हें भक्ति के सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने जीव की स्वरूप स्थिति भौतिक दशाओं में उसके बंधन के कारण भगवान से उसके नित्य संबंध, परमेश्वर की दिव्य स्थिति। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी ना, उसके विषय में यहाँ पर लिखा है कि जीव की स्वरूप स्थिति, वास्तव में जीव क्या है। चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने पूछा था, जिज्ञासा प्रकट की थी कि आमी के मैं आमार जा पता जा रता पत्र, कि मैं कौन हूँ भगवान, मुझे क्यों तीनों प्रकार के कष्ट सता रहे हैं। तो ये जब एक भक्त अपनी जिज्ञासा अपने भगवान के सामने रखता है, तो फिर भगवान दिव्य ज्ञान के से उसकी समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर देते हैं। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि जीव की वास्तविक स्थिति क्या है, भगवान का सनातन दास, और क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर माया का दास बना है, इसीलिए उसको ये सारे कष्ट मिल रहे हैं। भौतिक दशाओं में उसके बंधन का कारण क्या है, कि वो भगवान के साथ अपने रिलेशन को, अपने संबंध को भूल गया। जीव का स्वरूप आत्मा है और वो अपने आप को देहात्म बुद्धि में ही समझता है, देह को ही सब कुछ मानता है, यही उसके कष्ट की एकमात्र वजह है। यदि वो अपने आप को आत्मा माने, तो फिर कष्ट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। तो भौतिक दशाओं में उसके भवबंधन का कारण यही है कि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है, भगवान से उसके नित्य संबंध को भूल चुका है, और परमेश्वर की दिव्य स्थिति के विषय में बताया और विभिन्न पूर्णांश अवतारों में उनका विस्तार, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों पर उनका नियंत्रण, भगवान श्री कृष्ण के समस्त अवतारों के विषय में और भगवान किस तरह किस प्रकार समस्त ब्रह्मांड पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं, उनके दिव्य धाम की प्रकृति, भक्ति कार्य, उनके विकास की विभिन्न अवस्थाएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं की विधि, क्रमिक अवस्थाएं बताएं कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, साधु संघ, उसके बाद भजन अदव श्रद्धा तथा साधु संघ, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद ऐसे करते करते निष्ठा, आसक्ति, प्रेम और भाव की स्टेज तक आपको पहुंचना है। ये सारी अवस्थाएं बताएं, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाओं की विधि विधान, विभिन्न गुणों में विभिन्न अवतारों के लक्षण तथा शास्त्रों के अनुसार उनकी पहचान करने की शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बहुत बहुत ज्ञान दिया और 2 महीने तक वहीं पर वाराणसी में ही चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की वार्ताएं, दिव्य वार्ताएं चलती रही। बाद में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने जितने भी शास्त्र लिखे वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार ही। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से संबंध एक पूरा वृहद अध्याय है। अब चैतन्य हम जो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा एक पूरा चैप्टर है जिसमें चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की इन सारी, अब यहाँ पर तो सिर्फ हेडिंग्स हैं कि ये बताया, उसमें क्या बताया वो सब उसमें हमें पता चलेगा। उन समस्त उपदेशों की विशुद्ध व्याख्या के लिए पूरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी। इनका विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। तो श्री रूपा जी को कह रहे हैं कि अगर मैं वही लिखने के लिए बैठ जाऊंगा फिर भागवतम तो लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूरी किताब उसके लिए ही आ जाएगी। तो वो जो मैंने अलग से बुक लिखी है ना चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, अगर आपको वो जानना है उसके विषय में तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी मथुरा गए और वहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट जगह थी वो सब देखी, फिर वे वृंदावन पहुंचे और फिर वहां से वृंदावन। भगवान चैतन्य उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इसके अलावा सन्यासी होने के कारण वे समस्त वर्णों तथा आश्रमों के शिक्षक थे, लेकिन वे समस्त जाति के वैष्णवों का भोजन ग्रहण करते थे। अब वो तो उच्च परिवार के थे, शिक्षक भी थे, लेकिन फिर भी वो सब जितने भी ब्राह्मण थे जो भी टाइप के थे उनका भोजन जरूर स्वीकार करते थे। मथुरा में सनोड़िया ब्राह्मण समाज में सबसे निम्नतर स्तर पर माने जाते हैं। अब एक ब्राह्मण खाना ने जो बहुत छोटा मतलब निम्नतर माना जाता है, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी भोजन स्वीकार किया क्योंकि यह आतिथ्य संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। अब यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जो हमारी संप्रदाय के बहुत ही महान आचार्य हैं, उनके शिष्य जो थे वो इसी ब्राह्मण परिवार से थे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। उन्होंने 12 वनों की यात्रा की। अब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 24 महत्वपूर्ण जो स्थान थे उनका उसमें स्नान किया और 12 वन, अब वृंदावन में बहुत सारे वन हैं, उनमें 12 वनों की यात्रा की। इन वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हो। अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही थे, तो वृंदावन की जो गायें थी, जो पशु पक्षी थे, पहचान गए अपने भगवान को। वास्तव में भक्तों, मनुष्य की दृष्टि बहुत ही सीमित होती है, लेकिन जब पशु पक्षी होते ना वो बहुत हृदय से देखते हैं, अपने हृदय से। जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो फिर उनका हृदय से स्वागत किया। ऐसे लग रहा था कि वे भगवान चैतन्य के बहुत ही पुराने मित्र हैं। महाप्रभु ने उन वनों के सारे वृक्षों का आलिंगन भी किया, सारे वृक्षों से महाप्रभु ने आलिंगन करके प्रेम से मिले। ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो रहे थे। कभी वे मूर्छित हो जाते किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चेतना आ जाती। वृंदावन के वन के भीतर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे वे अद्वितीय तथा अवर्णनीय थे और हमने उनकी रूपरेखा ही दी है। यानी कि अब वो जो हम वहां पर हो रहा था चैतन्य महाप्रभु के जो उनके अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहे थे वो तो बताने जैसी है ही नहीं, हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसको हम कैसे बताएं, लेकिन हमने तो सिर्फ क्या किया, रूपरेखा सिर्फ ऐसे बता दिया कि ऐसा हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु के अश्रुधाराएं निकल रही थी, कंपन हो रहा था और प्रेम में वो भाव विभोर हो रहे थे, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था वो तो इतना दिव्य है कि हम उनको अपने शब्दों में बता नहीं सकते। महाप्रभु ने वृंदावन में क्या क्या देखा और उसके अतिरिक्त कौन कौन सी लीलाएं हुई वो हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्णा।